सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
कोरोना की पिछली लहर में कोरोना वायरस हमारे अंचल से कुछ दूर दूर रहा, बहुत कम लोगों को संक्रमित कर पाया। लेकिन ये दूसरी लहर हम सबको अंदर तक हिला चुकी है। हर रोज हम अपने परिचितों, परिवार वालों, आस पड़ोस वालों सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये संक्रमित हुआ, इसने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई जैसी खबरें रोज़ पढ़ पढ़ कर एक आतंक सा मन में बैठ गया है। लेकिन कोरोना का ये वायरस लोगों पर कुछ इस तरह असर कर रहा है कि किसी पर ये असर बहुत हल्का हो रहा है और किसी पर बहुत गहरा। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, किसी को इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, कोई वेंटिलेटर तक पहुंच रहा है और कोई वेंटिलेटर तक पहुंचने के पहले ही अपनी सांसें तोड़ दे रहा है। लंग्स इन्फेक्शन हो रहा है और भी बहुत कुछ। हर रोज़ हम एहतियात की बातें सुनते हैं, समझाइशें सुनते हैं, लेकिन आज हम आपको सुनवा रहे हैं हमारी प्रतिनिधि सुमेधा अग्रश्री से चंपा भट्टाचार्य की बातचीत, जो कोरोना से गहरे रूप में संक्रमित होकर काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रहीं और अब कोरोना से युद्ध जीत कर वापस अपनी आम जिंदगी जीना शुरू कर चुकी हैं। आइए उनके अनुभवों को जानें और कुछ सीखें, समझें कि किन चीज़ों से हमें बचना है और कैसे हमें सकारात्मक बने रहना है।
सब मित्रों को बहुत नमस्कार। ये हम शुरुआत कर रहे हैं ऐसी बातचीत की कि जो भी हमारे मित्र कोरोना से उबर चुके हैं, जिन्होंने इस कोरोना की जो भी बीमारी है उसको झेला है, उसकी सारी मुसीबतों को झेला है और उससे अब उबर चुके हैं और अब लोगों को हौसला दे रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों से बातचीत करें और एक अच्छा सा सकारात्मक माहौल बना सके, क्योंकि हर जगह ये बात चल रही है कि बीमारी है। और सच बात यह है कि इस बीमारी से सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। तो उस डर को खत्म करने की कोशिश करेंगे हमारे ये सारे मित्र। तो इस कड़ी में, क्योंकि आज पहला एपिसोड है, पहली बार है और लाइव में थोड़ी सी दिक्कत भी हुई, तो हम इसको रिकॉर्ड करके आपके सामने लाएंगे। तो आज हमारे साथ है चंपा भट्टाचार्य जी, जो बिलासपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने अभी हाल ही में 8-10 दिन पहले ही ये कोरोना से उबर कर घर आई हैं। तो हम ये सिर्फ 15 मिनट का हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम उनकी सारी वो चीजें सुनेंगे जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आएगी। तो चंपा जी, पहले तो आपको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने एक ऐसी बीमारी का सामना किया जो एक तरह से हवा बन चुकी है और उससे आप बहुत सफलतापूर्वक उबर कर आए। तो पहला सवाल तो यही कि आपको कब एहसास हुआ कि आप इस बीमारी में हैं और फिर आपने पहला कदम क्या उठाया?
होली के पहले शनिवार को मेरे गले में हल्की सी खराश और दर्द सा महसूस हो रहा था। मैं ऑफिस गई और मैंने अपने डिस्पेंसरी के डॉक्टर से बात किया और उनसे कहा कि मुझे गले में खराश और लग रही है, तो उन्होंने मुझे दवाइयां लिख दी और ऑफिस से लौट के।
जी जी बोलिए बोलिए,
कॉल आ गया था। ऑफिस से लौट के मैं दवाइयां लेकर के आ गई और उसके बाद दोपहर को मैं खाना वाना खाई, हाफ डे रहता शनिवार हमारा, तो उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैंने दवाइयां भी ले ली और फिर तब तक मुझे कुछ लग नहीं रहा था, पर ये मन में ये बात आने लगी थी कि शायद मैं अब कोरोना के चपेट में आ रही हूँ। धीरे धीरे शाम हुई, तभी भी मुझे कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी और मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। शनिवार को तकरीबन पूरी रात मुझे वोमिटिंग हुई और फेवरेज जैसा लगने लग गया था और फिर संडे पड़ा तो संडे दीदी मेरे घर के जस्ट सामने फ्लैट में दीदी रहती हैं, वो सुबह आई, मैं लेटी हुई थी तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया, तो मैंने बताया कि रात में मुझे उल्टियां हो रही थी और थोड़ा सा फेवरेज जैसा मुझे लग रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रेस्ट कर ले, ठीक हो जाएगा। पर मुझे ये बात मन में आने लगी थी कि शायद मैं कोरोना के चपेट में आ रही हूँ और ये इस वजह से ये दिमाग में मेरे चलने लग गया था और ये मुझ पे शायद हावी होने लगा था कि मैं इस बीमारी में फंस रही हूँ। पर
तो आपने बिना देर किए टेस्ट करवाया?
नहीं, संडे टेस्ट हो नहीं पाया और मंडे को होली था, तो होली में भी कोई मुझे नहीं मिला। तो जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि 5 दिन के पहले अगर आप टेस्ट कराओगे तो रिपोर्ट सही नहीं आएगी, मैंने मंगलवार को टेस्ट कराया, घर बुलाया। मेरा फीवर बढ़ गया था काफी, मुझे बुखार हो रहा था और बुखार ठीक भी नहीं हो रहा था। दवाइयां खाए, उतरा और फिर चढ़ा, इस तरह से चली थी। और बुखार मेरा 102 103 चल रहा था, तो मैंने घर पे ही बुलाया, मैं कहीं जाने की स्थिति पे नहीं थी। तो वो आकर के उसने मुझे तुरंत रिपोर्ट दिया कि पॉजिटिव है। उसके
ये
बाद
जैसे ही
फिर
आपको खबर मिली कि आप पॉजिटिव हैं,
जी
आप तत्काल हॉस्पिटल गई,
नहीं,
जो
मैं
स्वास्थ्य
तत्काल
कर्मी
हॉस्पिटल
जी
तत्काल नहीं गई, मैंने डिस्पेंसरी में डॉक्टर को फोन किया और उन्हें मैंने बताया कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो उन्होंने कुछ दवाइयां दी मुझे और वो दवाइयां मैंने मंगा ली और फिर वो दवाई मैंने लेना शुरू कर दी, लेकिन फिर भी मुझे राहत नहीं हो रही थी, मेरा बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा था। और इस वजह
ये
से
कितने दिनों तक चला आपको दवाइयां लेने का सिलसिला? 2 3 दिन?
मैं 8 दिन,
8 दिन
और
तक
आठ
आपने
दिन
दवाइयां ली?
हाँ 8 दिन मैं दवाई लेती रही और मैं घर पर ही थी,
तो इससे
लेकिन
दो बातें
मुझे
क्लियर होती है चंपा जी, कि पहला तो
जी
ये कि अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स दिखते हैं कि आप में कोरोना है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और 4 5 दिन के अंतराल में फिर आप टेस्ट कराइए, पहली बात ये।
बिल्कुल
दूसरी बात ये कि अगर आपको पता चल भी गया है कि आप पॉजिटिव हैं, तो पैनिक होकर तुरंत हॉस्पिटल भागने की बजाय डॉक्टर से सलाह लीजिए और घर पर ही
बिल्कुल
रहकर वो दवाइयां लीजिए। हो सकता है कि शायद आप अच्छे हो जाएं,
घर,
लेकिन
हाँ
आपके केस में ऐसा
बिल्कुल
हुआ
घर
कि
पर रहकर
आपका
ठीक
8 दिन बाद भी बुखार नहीं उतरा, फिर
हो
उस
सकता है।
केस में आप
मेन
जी
प्रॉब्लम यही था कि बुखार नहीं उतर रहा था। जिनको
जी
बुखार कम है, 100 के अंदर है अगर बुखार अगर आपको, तो आप घर में दवाइयां लेकर के बिल्कुल ठीक हो सकते हैं,
जी
इलाज है, इसमें कोई डर नहीं। लेकिन चूंकि मेरा
फिर आपका
बुखार एक
बुखार जब
तो
नहीं उतरा, तब आपको अंततः हॉस्पिटल जाना पड़ा।
हाँ, प्रॉब्लम ये हो गई कि बुखार की वजह से मेरा ऑक्सीजन लेवल कम होता चला गया।
अब जी
जिनको टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन लेवल उनका कम होता है, तो जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, आप बातचीत कर पाने में आपको मुश्किल हो जाती है, आप फिर चलने फिरने लायक नहीं रह जाते हैं। ऐसी स्थिति पे मुझे लगा कि अब मुझे भर्ती हो जाना ही चाहिए। फिर मैंने अपने ऑफिस के कोलीग से बात करी कि मुझे अर्जेंट एडमिट होना है, पेपर बनवा के ला दो, तो फिर इमिडिएटली पेपर बना के ला दिया। और फिर उसके बाद मेरे
आप
अग्रज, हाँ मेरे अग्रज
जी
फैमिली
मैं आती हूँ, उस पर भी आती हूँ। पहले ये
जी
जानना चाहेंगे कि आप जब हॉस्पिटल पहुंची, कितने दिन आप हॉस्पिटल में रही,
मैं करीबन 10 से 12 दिन के आसपास रही।
और इस दौरान 10 से 12 दिन के दौरान हॉस्पिटल में अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, थोड़ा सा संबल बनाए रखने के लिए आपने क्या किया? और डॉक्टर्स का, मैं साथ में जोड़ देती हूँ सारे सवाल कि आपके अनुभव साथ में निकल के आ जाएं। डॉक्टर्स का, यूं कहें कि स्वास्थ्य कर्मियों का, जो भी वहां पर स्टाफ काम कर रहा था, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, या दूसरे स्टाफ के मेंबर्स हो, उनका कैसा सहयोग रहा? और आपने अपने आप को संतुलित रखने के लिए, पैनिक नहीं करने के लिए क्या किया?
ये बात को मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी। जब मैं घर पे थी उस 8 दिन के दौरान में ही करीबन 7वें दिन मुझे ये लगने लग गया था कि अब मेरी स्थिति बहुत खराब हो रही है, मैं नहीं बच पाऊंगी। बिल्कुल ये एक रात ऐसा आया कि मुझे लगा कि किसी ने धोबी पछाड़ मार के मुझे निचोड़ के रख दिया और पूरे कपड़े गीले हो गए, बिस्तर गीला हो गया, पसीने से तरबतर थी मैं। उस रात मुझे एकदम नींद नहीं आई और बार बार ये ख्याल आ रहा था कि अब मुश्किल है बचना, अब नहीं बच सकते हैं, ये समय समाप्ति की घोषणा है मेरी। सुबह दीदी जिया जी सामने में रहते हैं, उन लोग आए, मतलब घर के बाहर से ही बातचीत कर रहे थे, एक जाली का दरवाजा है मेरा, उस जाली के दरवाजे से बाहर से ही वो लोग बात कर रहे थे और मैं जमीन पे लौट रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरा बचना बिल्कुल मुश्किल नहीं, तो वो उन लोगों ने मुझे बहुत समझाया। मेरी छोटी बहन बिलासपुर में ही रहती है, उसने मुझे फोन किया, सब लोगों ने मुझे फोन किया और उन्होंने बताया कि तू हिम्मत कैसे हार सकती, तुझे हिम्मत हारनी नहीं है, तुझे जीना है, तुझे इस तरह हारेगी तो हम लोग कैसे संभालेंगे। तभी मैंने फैसला लिया कि मुझे अब एडमिट हो जाना चाहिए। और मैंने जब सारी लड़ाई अपनी लड़ी है और हमेशा मैंने अपने आप को जीता है, तो ये छोटी सी चीज, एक बीमारी मुझे कैसे हरा सकती है, वो ख्याल मेरे मन में आया और मैंने अपने आप को मजबूत किया कि नहीं, मुझे लड़ना है, मुझे जीतना है और वापस आना। और
बिल्कुल
इसी इच्छा शक्ति के साथ मैं एडमिट हुई।
बिल्कुल। तो ये इच्छा शक्ति बहुत काम आती है, ये एक और बात हमारी समझ में आई। अब हम वापस उसी चीज पर आएंगे कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका कैसा सहयोग रहा, जो वहां काम करने वाले बंदे थे, नर्स थी, जो भी आपको अटेंड कर रहे थे, उनका किस तरह से सहयोग रहा?
मैं तो ये बताऊंगी कि मेरे लिए वो लोग ईश्वर हो गए। जितना मेहनत उन लोगों ने किया है, रात दिन, मुझे दिन में 3 इंजेक्शन हाथ पे लगते थे, दो ड्रिप लगता था और 2 इंजेक्शन पेट में लगते थे, मतलब नहीं, 6 इंजेक्शन एक दिन में और रात में मिला के 6 इंजेक्शन हाथ में लगते थे, 4 ड्रिप लगते थे और 2 इंजेक्शन पेट पे लगते थे। उन लोगों को मैंने देखा है, जिस दिन मैं भर्ती हुई थी वहां पे करीबन 40 से 50 लोग थे जिन लोगों की क्रिटिकल कंडीशन थी। मुझे भी, मुझसे तो नहीं, मेरे दीदी लोगों से डॉक्टर ने यही कहा था कि पेशेंट बहुत सीरियस है और हम दवाइयां करेंगे, अब डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि वो कैसे ले। तो उन लोगों का
इतने
जो
सारे
मेहनत,
पेशेंट्स को वो लोग एक साथ हैंडल कर रहे हैं। यहाँ एक और
बिल्कुल
बात निकल कर आती है कि अगर हमारा पेशेंट बहुत क्रिटिकल भी है तो भी किसी स्वास्थ्य कर्मी पर या डॉक्टर पर हम अपना गुस्सा उतार कर शायद उसकी मदद नहीं करेंगे, उल्टा हम उस डॉक्टर को भी थोड़ा सा मेंटली टेंशन दे सकते हैं। तो थोड़ा संयम
बिल्कुल
बनाना परिवार वालों को भी जरूरी है। अब यहाँ पर ये
बिल्कुल
बात आएगी कि हॉस्पिटल में पेशेंट तो ये नहीं देख पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, वो अपने आप को, जैसे आपने बताया कि अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपने अपनी इच्छा शक्ति को थोड़ा सा प्रगाढ़ कर लिया, लेकिन परिवार का, दोस्तों का, मित्रों का, उनका साथ भी बहुत जरूरी होता है। आपके केस में
बिल्कुल
ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको उस पूरे 10-15 दिनों तक पॉजिटिव बनाए रखा?
मेरे सबसे बड़ा जो था, मेरे घर परिवार के अलावा मेरा अग्रज परिवार, अग्रज नाट्य दल का जो परिवार है, उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत ज्यादा। मुझे हॉस्पिटल एडमिट करने से लेकर मेरी, इवन कि जब मैं घर पे भी थी तो मेरी दवाइयां ला के देना, ऑक्सीमीटर ला करके देना, या सारी चीजें वो लोग कर रहे थे। जब भी मुझे जरूरत हो रही थी, बाकायदा मुझसे घर के बाहर से ही बातचीत कर रहे थे, आ रहे थे, मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और मैं भर्ती हो जाने के बाद उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं घर का खाना खाऊं तो सुबह का नाश्ते से लेकर रात के खाने तक मुझे खाना वहां पहुंचाया जा रहा था। उनको अंदर आने की इजाजत नहीं थी, वो बाहर गार्ड को दे दे रहे थे, वो खाना मुझे पहुंचा जा रहे थे। और उससे भी बड़ी बात एक ये भी थी कि हर दिन दोपहर के खाने के साथ और रात के खाने के साथ एक चिट्ठी मुझे आती थी, किसी न किसी की चिट्ठी।
अरे
और वो
वाह।
चिट्ठी मेरे साथ, मेरे ऊपर में दवाई के साथ साथ वो एक काम कर रहा था कि ये सब जो है मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी।
ये चीज बड़ी इमोशनल
जी
करने वाली है कि परिवार वाले
बिल्कुल
दूर रहकर भी सपोर्ट कर सकते हैं, परिवार वाले मित्र हैं, आप जिनसे भी जुड़े हुए हैं, दो शब्द बहुत मायने रखते हैं। जी
बिल्कुल। मुझे इतने फोन कॉल्स आ रहे थे, मुझे इरिटेशन हो रहा था, मैं, क्योंकि मेरे कान बज रहे थे, बिल्कुल सीटियां बज रही थी मेरे कानों में। ये भी कोरोना का एक सिम्टम है,
अच्छा।
कान में सीटियां बजना, ये भी एक सिम्टम है। लेकिन फिर भी मैं सबके कॉल रिसीव कर रही थी क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये लोग मेरे लिए फोन कर रहे हैं तो मुझे जरूरी है कि मैं इनको रिप्लाई करूं। बहुत फोन बज रहे थे, मेरे कान बजने लगे, लेकिन इसके बाद भी मैं सबको रिप्लाई कर रही थी कि नहीं, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। और उनके आ रहे थे कि नहीं, तुझे जल्दी ठीक हो। और ये जो
अब
बात
एक आ,
है ना, ये बहुत बढ़ाता है मनोबल को, ये सब चीज।
जी तो एक सीख यहाँ हमको ये भी मिलती है कि पेशेंट को हॉस्पिटल भेजकर आपको शांत नहीं बैठ जाना है, उसको बूस्टअप करने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीजें करती रहनी है ताकि वो अपना मनोबल बनाकर रखे। अब एक बात
बिल्कुल
और कि आप वहां से निकलकर आ चुकी हैं, अब उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो इस बीमारी के होने के डर से घबरा रहे हैं कि कहीं हमें ना हो जाए, कहीं हमें ना हो जाए, तो उनको क्या कहना चाहेंगी?
मैं तो ये बात पहले ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है, कि प्याज खा लो तो एक दिन में ठीक हो जाएगा। अगर प्याज खा लेने से एक दिन में ठीक हो जाता तो साल भर की लड़ाई लोग नहीं लड़ते, वैक्सीन का इंतजाम नहीं किया जाता, लोग बीमार नहीं होते, लोग कोरोना से मरते नहीं अगर प्याज से हो जाता। ये मैं जरूर कहूंगी कि हाँ, आप भाप लीजिए, बराबर भाप लीजिए, काढ़ा पीजिए, अपने आप को जितना गर्म खाना खा सकते हो गर्म खाना खाइए, पानी गर्म पीजिए, ये सारी चीजें आप अपने जीवन में अपना लीजिए। डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ कि नहीं, हम अगर हो गया तो भी हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इलाज है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी आपको साथ दे रहे हैं, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति को, अपने मनोबल को बढ़ा के रखना है और बाकी चीजों पे मत जाइए।
अब ये बात कि चंपा जी, आप इस बीमारी से उबर चुकी हैं, और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि जो इस बीमारी से उबर चुका है उसका प्लाज्मा बहुत काम करता है सीरियस पेशेंट के लिए, तो क्या अब आप उस स्थिति में हैं कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो आप अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगी?
बिल्कुल, 28 दिन के बाद दे सकते हैं प्लाज्मा, अभी मुझे 10 दिन हुए हैं, मैं बिल्कुल देना चाहूंगी, जिसे भी जरूरत होगा मैं बिल्कुल हूँ। और ये सहयोग अगर हम आपस में नहीं करेंगे तो कौन आएगा करने के लिए, आगे बढ़ना
चंपा जी,
चाहिए,
बहुत
लोगों को हेल्प
धन्यवाद। हमने
करनी
इसका टाइम
चाहिए।
लिमिट 15 मिनट इसलिए रखा ताकि लोग भी चलते फिरते भी इसको सुन सकें, और सुनते सुनते इस पॉजिटिविटी को ले सके कि डरने की जरूरत नहीं है, आप बहुत संयम से इस बीमारी से उबर सकते हैं, और एक बार जब उबर जाएं तो दूसरे लोगों की मदद के लिए तैयार हो जाएं। तो बहुत
बिल्कुल
शुक्रिया आपका, और हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज में हम हर उस जिले के, जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं, उस जिले के हॉस्पिटल्स की और प्लाज्मा डोनेट करने वालों की जानकारी भी हम इसमें दे सकें। आज पहली बार
बिल्कुल
था तो हमारे पास बहुत सारी जानकारियां अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम वो इकट्ठा करके इसमें देते जाएंगे। चंपा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप एक स्वस्थ और बहुत खुशहाल जीवन जिए।
थैंक यू।
जीत गए कोरोना से, कोरोना की जंग से जीते हुए लोगों से एक सकारात्मक बातचीत। प्रस्तुति सुमेधा अग्रश्री।